हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का अंग है। भागवत है श्री कृष्णेर अंग। अंग का क्या अर्थ है? पार्ट ऑफ दी लिम्स ऑफ दी बॉडी। भागवत भगवान का स्वरूप है, श्री अंग है, श्री विग्रह है। तो भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल बोलते हैं। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है और दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल है और मुख में मुस्कुराहट है और वो मुस्कुराहट भक्तों का धन है। इसलिए दसम स्कंद विशेष रूप से भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ऐसी भागवत की 11वां स्कंद ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का क्राउन ऑफ द हेड है। इस तरीके से भागवत एक एक स्कंद भागवत के एक अंग के साथ तुलना दी गई है भगवान की। तो अब हाँ, आज हम भगवान के दसम स्कंद भागवत के दसम स्कंद भगवान के श्री मुख के मुख के ऊपर जो सदा मुस्कुराहट जो 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 स्माइल होती है, जो भक्तों का वही धन है, उसका दर्शन करेंगे। दसम स्कंद सबसे बड़ा है, 90 अध्याय 90 चैप्टर्स है और इसके दो विभाग होते हैं। एक को बोलते हैं पूर्व अर्ध उत्तर अर्ध। पूर्व अर्ध फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में भगवान की वृंदावन और मथुरा लीला है और ये ऑलमोस्ट 50 अध्याय इसमें हो जाते हैं। और सेकंड पार्ट उत्तर अर्ध में भगवान की द्वारका लीला है। और भगवान की वृंदावन और मथुरा लीला में भी राउंड अबाउट 11 साल भगवान के वृंदावन में है। फर्स्ट 11 इयर्स वृंदावन, नेक्स्ट 17 इयर्स समथिंग 17 साल राउंड अबाउट मथुरा और उसके बाद भगवान की द्वारका लीला है। तो 125 साल तक भगवान इस धरती के ऊपर अपनी लीला करते रहे। वो इसका विभाजन इस तरीके से है, 100 साल तक गोपियों और भगवान का एक दूसरे से अलग होने का परस्पर श्राप था। फॉर 100 ईयर्स गोपीज एंड कृष्ण वर सेपरेटेड। तो 1 साल तक इनकी जुदाई रही, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का दोबारा मिलन हुआ। पहला मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में, दोबारा मिलन भगवान वापस वृंदावन आए और द्वारका में भी गोपियां गई हैं, जहां गोपियां गोपी तालाब में नहाया है, जहां से गोपी चंदन आता है जो हम लगाते हैं। तो सिद्धाश्रम में भी गोपियों और श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन है। तो ये भागवत का सारा दसम स्कंद का दर्शन है। पहले अध्याय में परीक्षित महाराज का जिज्ञासा है, इसकी डीप डिजायर टू हियर कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज आपने बहुत विस्तार से सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्रवंश का भी वर्णन किया, लेकिन चंद्रवंश के वर्णन में कृष्ण कथा सुनने की मुझे बहुत ज्यादा उत्कंठा है। इसलिए भी कि कृष्ण से मेरा घनिष्ठ संबंध है, जिस मां के उत्तरा के उदर में मैं था उसी में भगवान ने प्रवेश किया था, तो मेरा भाई हुआ ना। मेरा इतना घनिष्ठ उनके साथ संबंध है कि उसी उदर में भगवान प्रवेश किए थे मेरी रक्षा के लिए। और फिर मेरे पूर्वजों का अर्जुन आदि की भगवान ने जो रक्षा की है, एक श्लोक बड़ा सुंदर का है, भीष्म और द्रोण और कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य हैं। भीष्म द्रोण और कर्ण तीनों परशुराम के शिष्य और तीनों अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली हैं। दो तो निश्चित रूप से और तीसरा बराबर का है कर्ण। अश्वस्थामा अभी तक जीवित है, मारा नहीं जा सकता। इन सब ने प्रहार किया, अपने दिव्य अस्त्र चलाए। स्वयं अर्जुन मानता है भागवत में कि श्री कृष्ण के कारण मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और परीक्षित आज कह रहे हैं कि मेरे पितामह की रक्षा की थी, इसलिए मैं उनकी कथा शुरू से आखिर तक फिर सुनना चाहता हूं, आरंभ से अंत तक सारी उनकी कथा मुझे विस्तार के साथ सुनाई। भीषम द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलोत्पला, ये पूरा श्लोक है। कई वर्तक केशव, ये तो केशव की कृपा से हमारे रक्षा हुई। एक सिद्धांत बताते हैं आगे चल के कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका तो रथ के उतरने के समय कृष्ण अर्जुन को बोलते तुम जल्दी उतरो। तो मर्यादा में अभी विश्व रूप भी देख चुका था कृष्ण का, चमत्कार देख चुका था, उसका वैभव और ऐश्वर्य अर्जुन देख चुका था, तो कह रहे थे नहीं नहीं पहले आप उतरो, भगवान भाई तुम जल्दी उतरो। अर्जुन नीचे उतरा पहले भगवान के कहने के ऊपर। वैसे नॉर्मली क्या है कि सारथी को पहले उतरना चाहिए, जो चला रहा है घोड़ा वो नीचे उतरेगा, लेकिन कृष्ण नहीं उतरे, अर्जुन को पहले उतरवाया। और जैसे कृष्ण नीचे उतरे एकदम रथ पूरे का पूरा अग्नि में भस्म हो गया। दिव्य रथ था, अर्जुन देख के आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ? बोला ये सारे दिव्य अस्त्र थे मेरे बैठे हुए, तुम्हार तक नहीं पहुंचे थे, मेरे उतरते ही पूरा रथ भस्म हो गया। तो ऐसी रक्षा की थी भगवान ने अर्जुन की। भीष्म पिता मैंने कहा कि अपना कुटुंब मान लिया था, जैसे अपने आदमी कुटुंब का भरण पोषण करता है, ऐसे अर्जुन के रथ को भगवान ने अपना कुटुंब मान लिया था, जैसे अपना परिवार हो। यह एक श्लोक बोला है परीक्षित महाराज ने सुखदेव की महिमा में, क्या कहते हैं? निवर्त त्रिशय उपगीय मानाय भव औषधि श्रोत मनोभिराम। परीक्षित महाराज कहते भव रोग, भव रोग का मतलब जन्म मृत्यु, उसकी औषधि मतलब मेडिसिन दवाई क्या है, उसकी दवाई है कृष्ण कथा। जन्म मृत्यु से मुक्त होने की भव रोग की दवाई है कृष्ण कथा। कैसे लेनी चाहिए दवाई? इस दवाई को इंजेक्शन लगेगी कि गोली खानी पड़ेगी? बोला श्रोत, ये कान के द्वारा दवाई ली जाती है, इस दवाई का रूट कान है, श्रोत मनोभिरामा। और ये किसको फायदा देती है? बोला जो महात्मा है उसको भी देती है, जो जिज्ञासु है उसको भी देती है, जो संसार के अंदर भोगी है उसको भी देती है, तीनों को देती है। उत्तम श्लोक गुणानुवादान, उत्तम श्लोक भगवान की कथा सबको सुख देती है। प्रभुपाद ने कृष्ण दि सुप्रीम पर्सनालिटी में लिखा क्या है, लोग कहेंगे ये लड़का लड़की कौन है, अच्छी बात है, लड़का लड़की को देख के वो कृष्ण की तरफ उनकी आकर्षण हो जाएगा, हु इज दिस बॉय एंड गर्ल, वाई दे आर टूगेदर, सो ये भी उनके लिए आकर्षण है। जो कामी पुरुष संसार में वो भी भागवत पढ़ेगा तो उसका काम कम हो जाएगा, लेकिन दवाई लेनी किससे चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। दवाई अच्छी है भाव रोग की है, लेकिन लेनी किससे चाहिए? देखो कभी खांसी होता है, बुखार होता है, जस्ट स्मॉल डिजीज होता है तो एक दवाई कहीं से पैरासिटामोल लेके खा लेते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन दिल की ऑपरेशन करानी हो तो, हार्ट सर्जरी करानी हो तो फिर हर एक डॉक्टर से तो नहीं कराएंगे ना, पक्का डॉक्टर होना चाहिए ना। कैसा डॉक्टर होना चाहिए? बड़ा निवर्त त्रिशयी, जो संसार के भोग से जिसकी इच्छा समाप्त हो चुकी हो, ऐसे आदमी से कथा सुननी चाहिए। कथा सुनाने वाला निवर्त त्रिशयी होना चाहिए, तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। तृष्णा किसको कहते हैं? हैंकरिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे मुक्त होना चाहिए। कहां बैठ के कथा करे? निवर्त त्रिशयी उपगीय मान आए, ऊपर बैठ के, संसार से थोड़ा ऊपर उठ के भगवान के निकट बैठ के कथा करता है, अथवा कथा भगवान को सुनाता है और प्रसाद के रूप में बैठे हुए भक्त सुनते हैं, वो कथा हृदय में परिवर्तन लाती, कथा भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। पुराने जमाने में जब संकल्प होता था वगैरह, श्री कृष्ण प्रीति अर्थे भागवत पाठ विनियोग, मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए कथा कर रहा हूं, मेरी प्रीति के लिए नहीं, जनता की प्रीति के लिए नहीं, कृष्ण प्रीति के लिए कथा कर रहा हूं। ऐसी कथा करने वाला मिलेगा तो दिल बदल जाएगा, दिल के अंदर से सब कचरा साफ हो जाएगा। और जो दिल के अंदर अभी संसार के काम को क्रोध लोभ मोह के जो अंदर शक्लें बनी हुई है वो बदल के उसके ऊपर मुरली मनोहर की छाप लग जाएगी। कथा करने वाला अगर निवृत्त ऋषि है तो इसलिए वो लोग जो कथा करते हैं भागवत की, जो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान नहीं जानते हैं, उसको निराकार का माया का रूप जानते हैं, वो कृष्ण कथा से हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते। वो भागवत कथा हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकती है, वो भ्रम भ्रम करते हुए भ्रम में डाल सकते हैं लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास भी नहीं है। कथा सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कथा सुनाने वाला भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करता था अथवा सुनने वाले का हृदय अभी तक उसको तैयार नहीं था। इसको ऐसे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष विवाह के बाद निश्चित रूप से समय आने के ऊपर संतान होना चाहिए। पुरुष पोटेंट है और स्त्री धारण कर सकती है गर्भ तो बच्चा होना चाहिए, नहीं होता है तो दोनों में से किसी एक में डिफेक्ट है। ऐसे एक भागवत सुनने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, नहीं होता है तो सुनाने और सुनने वालों में किसी न किसी में कोई ना कोई डिफेक्ट है। और स्कंद पुराण में तो सुनने वालों की भी चार श्रेणियां लिखी हुई है, अच्छे और चार नीचे स्तर के सुनने वाले, लो स्टेज के सुनने वाले, और सुनाने वालों की भी श्रेणियां लिखी हुई है। और फिर परीक्षित महाराज कहता ऐसा कौन आत्महत्यारा होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा, पशु घनाथ, अपने आत्मा को कौन संसार के अंदर भटकता हुआ छोड़ेगा कृष्ण कथा से, भगवान के चरणों में कौन नहीं अर्पण करेगा। तो ये अपनी उत्कंठा सुखदेव महाराज को बता रहे हैं परीक्षित। और परीक्षित बड़े और एक प्रश्न और भी पूछ लिया कि महाराज आपने नवे स्कंद में कहा कि बलराम जी रोहिणी का बेटा है और आपने ये भी कहा कि वो देवकी का बेटा है, तो एक ही बेटा दो माओं का बगैर शरीर बदले कैसे हो सकता है? दो माताओं का एक बेटा शरीर परिवर्तन के बगैर विदाउट चेंज ऑफ बॉडी हाउ कैन ही बी ए सन ऑफ टू मदर्स। और फिर ये भी मैं सुनना चाहता हूं कि आपने कहा कि उसका जन्म मथुरा में हुआ फिर वृंदावन उसको ले जाया गया, तो क्या उन्होंने कारण क्या था उनको ले जाने का, और फिर क्या क्या लीला उन्होंने वृंदावन में की, क्या मथुरा में लीला की, और ये मैं सब श्रवण करना चाहता हूं। उस वक्त सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वासुदेव कथा प्रसन्न पुनाति त्रियम, भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई क्वेश्चन पूछता है तो तीन को पवित्र करता है क्वेश्चन, पूछने वाले को, सुनाने वाले को और सुनने वाले को। क्वेश्चन पूछने वाला मानो यहां आपके मंदिर के जो भी संचालक है उन्होंने कथा का ये सेवा आयोजन किया तो उन्होंने मानो प्रश्न पूछा कि आओ कथा करो तो वो पवित्र हो गए, हमको कथा के करने की सेवा मिली, हम हमारा हृदय पवित्र हो गया, आप सुन रहे, तीनों को पवित्र, तीनों का फल तीनों का, एक कथा का कहते वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति त्रियम, तीनों को पवित्र करती है जैसे गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती। और फिर किसी भूमिका के बगैर एकदम सुखदेव गोस्वामी ने कहना आरंभ कर दिया। एक समय की बात है धरती के ऊपर आतिताई राजा बढ़ गए, धरती उनके उनके अपराधों से बहुत दुखी होकर गाय का रूप धारण किया। धरती के तीन रूप हैं, आदि भौतिक रूप ये है जो आप देखते हैं जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, रेती है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये धरती है आदि भौतिक रूप। आदि देविक रूप में धरती गाय का स्वरूप है। गाय की पहचान क्या है? सहनशीलता। गाय सहनशीलता का प्रमाण है, इसलिए धरती सबको उठा के चलती रहती है। इसके ऊपर हम सब कुछ भी करते हैं लेकिन फिर भी धरती सबका सहन करती है। आध्यात्मिक रूप में भूदेवी है, धरती भूदेवी है जो भगवान श्री विष्णु के साथ श्री देवी एक तरफ भूदेवी होती है। दक्षिण भारत के सब मंदिरों में आपको भूदेवी और श्री देवी दोनों विष्णु के साथ मिलेंगे, तो विष्णु पत्नी है। तो पृथ्वी के ये तीन रूप हैं, आदि भौतिक आदि देविक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी विष्णु पत्नी। तो आज जब पत्नी को कोई कष्ट होगा तो पति के पास जाएगी, ये तो प्राक नेचुरल है। तो आज पृथ्वी गाय के रूप में अपने पति के पास जाना है, लेकिन पति के पास जाने के लिए बेटे को साथ ले जाती है। बेटा कौन है? ब्रह्मा जी, भगवान के बेटे। तो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को आगे लिया, ब्रह्मा जी ने शंकर को लिया, अन्य देवता हो, और कहां गए? खीर सागर के तट पे। ये खीर सागर कहां है? ये खीर सागर ध्रुव लोक के साथ में इस भौतिक जगत में है, उसको श्वेत द्वीप बोलते हैं। ये खीर सागर इस भौतिक जगत में है जिसमें क्षीरोदक्षाय विष्णु सोते हैं। उस खीर सागर के तट के ऊपर जाकर प्रार्थना की, किससे? पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त की प्रार्थना वो भाषा है जो भगवान की प्रार्थना के लिए वेदों में वर्णित है, और पुरुष सूक्त की प्रार्थना से केवल ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को सुना। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी के संकट से पहले ही परिचित हूं। वो पति भी कैसा जिसको अपनी पत्नी के दुख का पता ना हो? भगवान ये कहता, अच्छा हुआ मुझे बताया, तो पृथ्वी कहती कैसा पति है, इसको पता नहीं है मेरे को संकट क्या है। तो भगवान ने भाषा क्या बोली? पृथ्वी के परेशानी से, संकट से मैं पहले से परिचित हूं, आई ऑलरेडी नो इट। अब ब्रह्मा जी सुनो, देवताओं सबको बोलो कि यदुवंश में अपने अंश से जाके प्रकट हो, मैं स्वयं आऊंगा। और एक लाइन बोली, श्री का प्रिय करने के लिए, श्री का प्रिय करने के लिए, इसका मतलब मेरे साथ राधा रानी आएगी, इसलिए आप अपनी स्त्रियों के साथ मेरी लीला में भाग लेने के लिए वहां प्रकट होना। ये भागवत का बहुत सूक्ष्म वर्ड है, श्री प्रिय, श्री के प्रिय करने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने सबको कहा, भगवान आएंगे, आप जाके अब सब अपने अंश से यदुवंश में प्रकट हुए, अपने स्त्रियों के साथ सब कुछ जाइए और वहां से वापस लौट के आए। ये कथा यहां भागवत में ऐसे चार जगहों पे कृष्ण जन्म का वर्णन है, हरिवंश पुराण में है, गर्ग संहिता में है, भागवत में है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर सब जगह मिलता है। लेकिन जो भी हो, अपन भागवत के अनुसार अभी चल रहे हैं। अब दूसरे तरफ एकदम परीक्षित महाराज को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और वहां महाराज देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन के बेटे वसुदेव से होने लगा। ये दूसरे तरफ की कथा बता रहे हैं। महाराज सूरसेन कहां है? सूर देश, सूरसेन एक देश का नाम है जो आगरा के अराउंड जमुना के तट पे दोनों तरफ सूरसेन देश कहलाता है। आज भी एक जगह है उसका नाम है सोरीपुर, और वहां बटेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहां प्रायः ये माना जाता है कि वो स्थान सूरसेन था जो बिल्कुल मथुरा से लगा हुआ है। ये क्षेत्र कहते हैं सूर क्षेत्र, सूरसेन का क्षेत्र था। तो सूरसेन महाराज का बेटा, कल हमने इसकी वंशावली पढ़ी थी, ये यदुवंश में आता है सूरसेन महाराज, इसका बेटा वसुदेव था। और भी बेटे थे लेकिन मुख्य वसुदेव का वर्णन यहां है। वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुभी। अनंक दुमदुभी का अर्थ यह है कि वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने अपनी दुमदुमियां अपने आप बजने लग गई थी, तो दुमदुभी जिसके जन्म के ऊपर बजती है उसको बोलते हैं अनंक दुमदुभी। तो एक दूसरा नाम वसुदेव का है अनंक दुमदुभी। आज वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ, शुभ विवाह का कार्य समाप्त हुआ और विदाई का समय हो रहा है। कंस उग्रसेन का बेटा है। यहां कंस का परिचय भी सुन लीजिए। कंस असल में कालनेमी राक्षस है, असुर है कालनेमी। वो हिरण्यकश्यप का बेटा है ऐसे लगता है पहले जन्म का। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती, वो है विदर्भ देश की। एक बार अपने मायके चली गई थी और ऊपर से जाते हुए कालनेमी ने देखा, वो सहेलियों के संग में खड़ी थी, वो उग्रसेन का रूप धारण करके नीचे उतरा और वहां से सहेलियों से अलग होके उनसे जब मिली पद्मावती, तो उसने पहचान लिया, ये तो उग्रसेन का रूप में असली आदमी तो नहीं है। तो हां हां करके हंसने लगा, रखे मैं कालनेमी हूं, पर आपने मेरा पतिव्रता भंग क्यों किया? तो बहुत बड़ा उनका आपस में डायलॉग है। वो बोला, पति तुम्हारा घर में नहीं है, तुम श्रृंगार करके यहां क्यों घूम रही हो? तुमने भी वेदों के नियम का उल्लंघन किया है। जो भी हो, कहने का अभिप्राय यह है कि कंस उग्रसेन के घर में पैदा हुआ था, लेकिन काल नेमी राक्षस था, और ये कंस उग्रसेन और देवक भाई हैं। तो अपनी बहन को, कजन बहन को कंस आजकल से मन में आया, मेरी बहन के साथ में जाऊंगा छोड़ने के लिए। ये अभी तक भी परंपरा भारत में विवाह के समय है कि लड़की को जब विदा करते हैं तो भाई साथ जाता है, क्योंकि नए घर में जा रही है तो कोई बात करने वाला हो तो भाई साथ जाता है, ये अभी मर्यादाएं चल रही हैं। कंस ने काम किया, क्या सारथी के स्थान के ऊपर बैठ गया, देवो की ओर वसुदेव ऊपर बैठ गए और रथ चला, सबने विदा किया और क्या क्या उसको दिया था जहेज, वो सब कुछ का वर्णन है। अब देवताएं ऊपर बैठ के, वो देवता कहते कंस अगर इतना धर्मात्मा हो गया और इतनी सेवा करने लगा तो भगवान के आने में देर हो जाएगी। तो आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, देवकी का आठवां गर्भ तेरा मृत्युकाल, आठवां गर्भ बोला है, न बेटा बोला है न बेटी बोला है। और कंस का सारा भाई का प्रेम एक मिनट में समाप्त हो गया। ये स्वार्थी असुरी लोग तब तक प्रेम करते हैं जब तक उनकी भोग में बाधा नहीं पड़ती है। एज लॉन्ग एज देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर गुड पीपुल। जैसे ही उनका भोग के ऊपर आपने उंगली उठाई, दे बिकम देवल, उनका प्रेम कपूर की तरह उड़ जाता है। कि असुर प्रकृति का व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार करता है, तप करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, लेकिन उस वक्त तक ये सब करता है जब तक उसके इंद्रिय तृप्ति में कोई रुकावट नहीं पड़ती है। जैसे ही रुकावट पड़ी, कपूर की तरह प्रेम उड़ गया, ईथर की तरह सब कुछ एवरपोरेट हो गया। उल्टे हाथ से देवकी के बाल पकड़े हैं, सीधे हाथ से खड़ग निकाली है और कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ है। अब देवकी का दर्शन कीजिए थोड़ी देर के लिए। देवकी शांत है, मौन है, न चिल्ला रही है, न रो रही है, न भाई को कह रही है मेरे को मत मारो, न पति को कह रही है मेरी रक्षा करो। इतनी मौन और शांत देवरूपिणी देवती देवकी है जिसको भगवान ने अपनी माता के लिए चुना है, शांत बिल्कुल। लेकिन वसुदेव ने देखा मेरा दायित्व है मेरी पत्नी की रक्षा करना चाहिए, तो उन्होंने पहले प्रशंसा की, भोजराज आप सौम्य हैं, आप बहुत शीतल स्वभाव के हैं, ये आपकी बहन है, मंगल विवाह का समय है और इस वक्त आपके जो कीर्ति है उसके लिए अपकीर्ति हो जाएगी, आप कहां स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे, पाप लग जाएगा। इससे भी कंस के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वसुदेव ने निर्णय किया कि जीवन के ऊपर जब घात आए तो पूरा प्रयास करना चाहिए उससे बचने का। अब एक बात वसुदेव के मन में आई, एक शब्द वसुदेव के मुख से निकल गया, दीन वत्सल कंस के लिए। सरस्वती कांप गई, बोला वसुदेव जैसा सत्यवादी इसको दीन वत्सल कैसे कह रहा है, ये दीन वत्सल कंस कैसे हो सकता है। सरस्वती कांप गई और सत्य की क्या बोलना है। फिर सरस्वती ने अपने डिक्शनरी में एक मिनट देखा, दीन वत्सल का अर्थ है गाय को, बछड़े को और ब्राह्मण को मारने वाला, ये दूसरा अर्थ है। वो अपने डिक्शनरी को एकदम देख के कहता, अरे ये ठीक है, ये कंस वैसा ही होगा, वसुदेव झूठ नहीं बोल सकता है। दीन वत्सल बोल दिया उसको, सौम्य बोला तो शांत रही, बोला कोई बात नहीं सौम्य चलेगा, लेकिन दीन वत्सला भोजराज ये बहुत इतनी प्रशंसा, चाटुकारी वसुदेव तो नहीं कर सकता है, वो भी क्षत्रिय है, चाटुकारी करना काम किसका होता है, चारणों का, चारण चाटुकारी करते हैं, वो बड़े आपकी प्रशंसा करके आपके गीत गाएंगे, वसुदेव क्षत्रिय है। और वसुदेव ने अब एक निर्णय ले लिया कि इस वक्त किसी वक्त से देवकी को तो बचाना चाहिए, बच्चा होगा तब की बात, तब कहा कंसराज आपको देवकी से भय तो नहीं है ना, आपको इसके संतान से भय है ना, तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, और यह वचन संस्कृत में लिखा है उसका अर्थ सुन लीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि इसके सारे संतान मैं आपको दे दूंगा, उसको छोड़ के जिससे आपको भय है। यह संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी कलाकारी है, हर एक आदमी इसको ऐसे नहीं पढ़ सकता है। लिखा है मैं आपको सारे इसके बच्चे दे दूंगा, उसको छोड़ के जिससे आपको भय है। अगर वसुदेव कृष्ण वसुदेव के घर में आए उठा के कंस जैसे कुरूर को दे गया है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के घर में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए जब ये शब्द सुना, कंस भी वसुदेव के सत्यवादिता के उपकार को लोहा मानता था कि he's always truthful, अच्छी बात है, ठीक है जाओ। कंस तो अपने राज में चला गया, वसुदेव यहां से अपने महल में चला गया। अपने महल में रहते हुए वसुदेव को पहला बेटा पैदा हुआ कीर्तिमान। वसुदेव अपने वचन के अनुसार बच्चे को लेकर अपने घर से कंस के सामने लाया। कंस ने बच्चे को देखा, कोमल बच्चे को देखा, बोले इससे मुझे डर थोड़ी है, आठवें से ले जाओ। वसुदेव ने बोला इतना धर्मात्मा कहां से हो गया, ये विश्वास तो नहीं किया जा सकता है इसके ऊपर। फिर भी वसुदेव वापस लौटा, नारद जी का ये फिर और दयालु हो गया। कंस भगवान के आने में देर हो जाएगी, वसुदेव सामने आ गए, कंस के नारद जी खड़ा हो गया। हाँ देवऋषि नारद आइए, आपका स्वागत है। बोला आइए, स्वागत की बात छोड़ो, मैं आ रहा था देवलोक से, सारे देवता वृष्णि वंश में जाके जन्म ले रहे हैं, वहां आपके खिलाफ कंस्पायरेसी हो रही है, आपको मालूम नहीं, आपको गणित आती है? अब नारद पूछता है कि आपको गणित आती है? ये देखो, ये आप गिनती करो, आठ, एक दो तीन चार आठ कौन सा है? बोला एक दो तीन चार पांच। बोला यहां से गिनती करो, एक दो। बोला पहला आठवां नहीं हो सकता क्या? तुम्हें तो कंस गणती आती नहीं है, तुम्हें पता नहीं लगता है? अरे बाबा, ये विष्णु बहुत बड़ा छल कर सकता है, तुम इतना उसके ऊपर विश्वास मत करो, ये गणित बहुत मुश्किल चीज होती है। बच्चे लोग आपको गणित आती है? यू नो द मैथमेटिक्स, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है? आप लोग ही सुनेंगे गणित। दिल्ली से वृंदावन 130 किलोमीटर है, ठीक है? एक एग्जामिनर आया था स्कूल के अंदर, बच्चों से ये क्वेश्चन कर रहा था एग्जामिनर, मैं सुना है इसलिए बता रहा हूं। बोला वृंदावन से, हाँ दिल्ली से वृंदावन 130 किलोमीटर, बताओ व्हाट इज माय एज? हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन नो? बच्चे लोग बताओ उसका एज क्या होगा? एक लड़का ऐसे बोलता है, सर मैं बताऊं? बताइए। बोला 48 ईयर्स सर, उसकी उम्र 48 ईयर्स थी। बड़ा खुश हो गया, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, बता बताओ बेटा कैसे किया सॉल्व प्रॉब्लम? बच्चा बोलता, सर मेरा भाई आधा पागल है, उसकी उम्र 24 साल है। माई ब्रदर इज हाफ केजी, ही इज ओनली 24 ईयर्स, सो यूर एज मस्ट बी 48। आपके क्वेश्चन से ऐसे लग रहा। सो कंस को भी गणित कम आती थी। अब कंस ने कहा वसुदेव को पकड़ के लाओ, देवकी को पकड़ के लाओ, कारागर में डाल दो। गर्ग संहिता में लिखा है पहले वसुदेव के घर के चारों ओर 10,000 सिपाही कंस ने खड़ा कर दिया था, लेकिन वो हाउस अरेस्ट। लेकिन आज उसको लड़के को लाके पत्थर की शिला के ऊपर मारा और इनको जेल में बंद कर दिया। और देवकी और वसुदेव के घर में 5 और बच्चे हुए, ये सब हो गए 6। इन 6 को बोलते हैं षडगर्भ। ये कौन थे? ये षडगर्भ कौन थे? मरीचि के बेटे थे। षडगर्भ ये थे देवता पहले, प्रजापति मरीचि के बेटे थे। जब ब्रह्मा जी की एक बेटी की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम था वाक, और ब्रह्मा जी के ऊपर माया का प्रभाव हुआ, अपनी बेटी वाक की तरफ दौड़ा, तो ये लड़के हंसे थे, इसलिए उनको शाप दिया कि तुम असुर बन जाओ, और काल नैमी के ये बेटे बने और हिरण्यकश्यप के पोते बने, और भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कंस को, जब हिरण्यकश्यप को यह पता लगा, हिरण्यकश्यप ने कहा अरे मेरे भी तुमने तपस्या नहीं की जाके, ब्रह्मा की तपस्या करते हो, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, तुम्हारे को तुम्हारा बाप दोबारा मारेगा। तो ये काल नेमी के बेटे थे, कालनेमी के हाथों से मरने थे, देवकी के उदर से उन्होंने जन्म लिया और कंस ने अपने बेटों को मारा। और यहां से ये बेटे कहां चले गए? सूतल लोक में बलि महाराज के पास। द्वारका लीला में एक दिन देवकी कहेगी, कृष्ण बलराम आपने अपने गुरु सांदीपनि मुनि का बेटा तो बहुत पहले समुद्र में डूब गया था, लाके दिया था ना, मैं मेरे 6 बच्चों को देखना चाहती हूं। श्री कृष्ण बलराम के साथ सूतल लोक में चले गए। बलि महाराज ने स्वागत किया, कैसे पधारे हो? बोला ये 6 आपके पास जो बच्चे हैं ना, ये मेरी माँ देखना चाहती है। बलि महाराज के वहां से वो 6 षडगर्भों को लाए और देवकी के हृदय में उन 6 बच्चों के लिए प्रेम आया मात्रा और उनके स्तन में दूध आ गया। इन 6 ने वो प्रसाद का दूध पिया जो कृष्ण ने पिया था, यहां से वो वापस देवता हुए। ये षडगर्भों की कहानी है। इसको भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये षडगर्भ क्या है? मरीचि मन का प्रतीक है, मरीचि मन का प्रतीक है। और इसके 6 जो बेटे हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है। जब तक ये 6 अवगुण नाश नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे भक्त के हृदय में। देवकी भक्ति भक्ति रूपी है, कंस भय है, भय से भक्त के हृदय से जब तक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर नहीं नाश होंगे तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। तो भगवान के प्रकट्य की पहली भूमिका में षडगर्भ ये नाश हुए। आज भगवान, अब कोई आदमी आएगा तो उसके लिए पहले क्या लाओगे? कुर्सी लाओगे ना भाई, आज आसन रखोगे तब बैठेगा ना। भगवान को आना है तो उसकी कुर्सी आनी चाहिए ना। भगवान का आसन क्या है? पंडित लोग क्या पढ़ते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं, शांताकारं भुजग शयनम का पद्मनाभ है। इसका अर्थ कभी विचार किया है? शांत आकारम, भगवान का आकार कैसा है, कैसे लगता है? बोला बहुत शांत है। कहां सोया हुआ है? बोला भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोया हुई आराम कर रहा है। सोया है सांप के ऊपर और है शांत। ये प्रवचन देते हुए, वैसे सांप बहुत नरम होता है, सांप बहुत नरम होता है। हो सकता है, मैंने कहा ये श्लोक की माना अगर लोगों को समझ में नहीं आई, नहीं तो डनलॉप की जगह भुजंग गधे निकलेंगे। भुजंग है, भुजंग गधे, सांप वाला जैसे, सांप से भी नरम गधे बनेंगे लोगों के, उसका नाम होगा अच्छा भुजंग शैनम, भुजंग गधे बनाओ, कुछ भुजंग गधे नए गधे बनाओ, सो सॉफ्ट। अब तो शेष को, शेष बलराम जी प्रवेश किया मां देवकी के उदर के अंदर तैयार करने के लिए, कृष्ण के आने के लिए उस आसन को। और ऊपर गोलोक में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवी का आवाहन किया, देवी देवी आ गई, आ गया। बोला भद्रा एक काम करना है, काम यह है कि बलराम जी नित्य रोहिणी का सुत है, रोहिणी सुत है, मैंने उनको विनती की है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो देवकी के उदर के अंदर जाके मेरे लिए आसन तैयार करें, लेकिन उसको आप देवकी के उदर से खींच कर रोहिणी के उदर में स्थापित करो। तो देवकी ऐसे देख, वो देवी देखने लगी, हाउ कैन इट बी, इट कैन बी डन, भद्र हो जाएगा, आसानी से आप कर सकती हो, प्लीज डू इट। और तब कह दिया वो कौन है, माम अंश, मेरा अंश है, शेष आख्याएं उसको शेष कहते हैं, और तुम उसको खींच के ले जाओगी, इसके लिए उसका नाम होगा संकर्षण, और वो बहुत बलवान होगा इसलिए उसको बल कहेंगे, बलभद्र, और सबको आनंद देगा इसलिए उसको राम राम भी कहेंगे। ये भगवान ने क्यों कह दिया देवी को? बलराम पहले आ रहा है ना, तो लोग कहेंगे जो पहले आया वो बड़ा है, बाद में आया वो छोटा है, तो इसलिए भगवान ने कहा मैं नामकरण में पहले बलराम का करता हूं। तो गुरु ही नामकरण करता है ना शिष्य का, तो पहले इनिशिएशन दे देता हूं, बलराम भले जन्म पहले, बाद में मैं लूंगा, लेकिन आई एम ऑलरेडी गिविंग हिम नेम। और देवी को कहा और एक काम करना है, आपको मेरी छोटी बहन बनकर अनुजा, अनुजा मतलब छोटी बहन बनकर नंद गोकुल में यशोदा के यहां प्रकट होना है। देवी ये दो काम तुम करोगी ना, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, विंध्या में तुम्हारी बहुत बड़ी पूजा होगी, भद्रा के नाम से, काली के नाम से, दुर्गा के नाम से, सौम्या तेरी जगह जगह पे पूजा होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये देवी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। देवी ने आकर देवकी के गर्भ से बलराम जी को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उस वक्त रोहिणी कहां थी? नंद बाबा के घर में रह रही थी। अब यहां इतना भी बताते चले, कल हमने आपको बताया था देवमीड़ नाम के राजा थे, उसकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी वैश्य थी जिससे पर्जन्य नाम का गोप पैदा हुआ, और एक थी क्षत्रिय, उससे सूरसेन पैदा हुआ। सूरसेन के घर में वसुदेव पैदा हुआ, और जो पर्जन्य था उसके घर में पांच बेटे पैदा हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। तो एक दृष्टि से वसुदेव और नंद कजन ब्रदर हैं, उनका सेकंड जनरेशन में पिता एक है। तो ये आपस में कहीं कहीं यशोदा का नाम भी देवकी मिलता है, हरिविलास पुराण में उसमें देवकी, यशोदा को भी देवकी कहा गया। तो ये दोनों भाई थे, इसलिए कंस के अत्याचार के कारण यदुवंशी तो सब चले गए थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन अक्रूर रोहिणी वहां रुके हुए थे। और फिर एक समय पे रोहिणी को घोड़े के ऊपर अक्रूर जाके ब्रज में छोड़ के आया था। बलराम जी वहां चले गए, और यहां बदनामी किसकी हुई? कंस की। कंस ने सातवां गर्भ गिरा दिया देवकी का, बदनामी कंस की हो गई, सातवां उधर समाप्त हुआ। और अब लिखा है शब्द जो भागवत में, वो ये है, भगवान अपि विश्व आत्मा। कौन सा भगवान? विश्व आत्मा। उसका अर्थ क्या है? विश्व आत्मा जो पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाला है और जो सबको प्रेम करता है। विश्व आत्मा का मतलब सबसे प्रेम करने वाला। काम क्या है उसका? भक्तानाम अभयंकर, भक्तों का भय नाश करने वाला भगवान। क्या किया उसने? आवेश अंश भागे न अनंक मन अनंक दुमदुबी, अपने सारे अंशों के साथ जो पूरे पहले पहले अवतार हुए थे, कच्छ मच्छ आदि, परशुराम वह आदि जो भी है, उन सबको अपने अंदर समेट कर वसुदेव के मन में प्रवेश हुए। भगवान कहां प्रवेश हुए? वसुदेव के मन में, ऐसे लिखा है। और वसुदेव के अंदर से प्रकाश निकलने लगा। आपने देखा है फोटो कभी संत का, महात्मा, वैसे भगवान के फोटो के चारों ओर देखो राउंड एक प्रकाश होता है ना, गोल। और संत महात्मा जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, उसके चारों ओर भी ऐसे प्रकाश निकलता है। कंप्यूटर वाला प्रकाश नहीं, असली प्रकाश। कंप्यूटर से आज सबके चारों ओर गोला बना देते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है। ओरिजिनल प्रकाश निकला वासुदेव के। और फिर लिखा है अच्युत अंशम जगत मंगलम, जगत का मंगल करने वाला अच्युत भगवान अपने अंशों के साथ देवरूपी देवकी, देवरूपिणी देवकी के दिल में, वसुदेव के मन से देवकी के दिल में प्रवेश किया। कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री और पुरुष के संभोग से बच्चे का जन्म हुआ, भागवत में नहीं लिखा है। वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में प्रवेश किया भगवान ने, और देवकी भी प्रकाशमान होने लगी, लेकिन वो ऐसा प्रकाश था जैसे आग के ऊपर किसी ने डब्बा ढक दिया है, तो उसके अंदर से प्रकाश ज्यादा जाहिर नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। और प्रभुपाद जी ने भावार्थ में लिखा है, इसको कहते हैं गुरु का शिष्य को दीक्षा देना। दिस इज ए परंपरा ऑफ इनिशिएशन। गुरु अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, मानो वसुदेव ने देवकी को इनिशिएट किया। दैट इज द मीनिंग। गुरु शिष्य के हृदय में अपने हृदय से भगवान को स्थापित करता है। और देवकी से प्रकाश होने लगा, और कंस आया देवकी से मिलने, और देखा देवकी इतनी तो चमक कभी नहीं रही थी, ये तो देवकी चमक रही है, और इतने इफल्जेंट लग रही है, लगता है मुझे मारने वाला इसके उदर में आ गया है। लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं, मेरी बहन है, गर्भवती है, इसको मारना नहीं चाहिए, मेरी बदनामी हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जिस भक्त के हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है, कंस जैसे क्रूर का भी मन बदल जाता है, कंस जैसा डीमन पीपल भी उसके माइंड में भी चेंज आ जाता है। अब यहां ये वातावरण बना हुआ है, इसके बाद वर्णन आता है कि देवता सारे कंस के कारागृह में उस कमरे में आए जिसमें देवकी और वसुदेव बंद थे। वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी थी और पांव में बेड़ी थी। बेड़ी का मतलब है इस कमरे के में घूम सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। देवता में शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, नारद आए, इंद्र आए, ये चंद्र आए, सारे देवता अंदर प्रवेश किया और गर्भ की स्तुति करने लगे। दुनिया में गर्भ की निंदा की हुई सब शास्त्रों में, गर्भ में जाने वाला गर्भ में नहीं जाना चाहिए। गर्भ कुंभी पाक नरक के कवि बोलते हैं इसको, उल्टा लटकना पड़ता है एवरीवेयर, गर्भ इज कंडेम्ड है ना। लेकिन यहां अद्भुत गर्भ है, भगवान आए हैं तो देवता उसका प्रार्थना करने के लिए आए हैं। किसी ने कहा कि भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं, तो क्या भगवान सब जगह है कि नहीं है? तो सब जगह है तो गर्भ में होने में तुम्हें कोई ऐतराज है? सब जगह में गर्भ नहीं होता क्या? परीक्षित की रक्षा की थी तब कहां से आए थे? हृदय से उतर के आ गए थे ना। बाहर तो कृष्ण खड़े ही थे रथ के ऊपर, तो अंदर हृदय से गए थे ना जाके परीक्षित की रक्षा की थी। तो आज हृदय में वसुदेव के भगवान उतर के और वहां से देवकी के हृदय में प्रकट हो गए और वहां से उतर के ऐसे लगा कि देवकी गर्भवती हो रही है, लेकिन असल में भगवान प्रकट हुए है तो उनका प्रकट इसलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे देवियम। भगवान का जन्म कर्म साधारण मानव जैसा नहीं होता है। और देवता क्या कहते हैं? सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य, आपने हमको कहा था आएंगे और आप आ भी गए। आप ही सत्य के मूल है, आप ही सत्य स्वरूप हैं, आपके आने से हमें बड़ी प्रशंसा हुई इस संसार के अंदर। आप जब आते हैं तो आपके चरणों की नौका बनाकर साधु संत भवसागर को पार कर जाते हैं। तब पाद पोते ना, तुम्हारे चरणों की नौका में भवसागर लोग पार करते हैं, लेकिन लोग का साथ नहीं ले जाते हैं। दे डोंट टेक दी बोट विद देम, वो पीछे छोड़ के जाते हैं, भक्ति के नेमों के रूप की नौका छोड़ के जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भगवान के नाम की नौका के ऊपर अनेक लोग चढ़ के भवसागर पार कर सकते हैं। और फिर देवता कहते हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं लेकिन भगवान आपके चरण कमल कमल की तब अंगरी पाद अंगरी तुम्हारे चरण कमल कमल की अवहेलना करते हैं, वो पतंती अध वो संसार में वापस गिरे। ये तो ये कौन कह रहा है? ये भगवान शंकर और ब्रह्मा कहते हैं। वो लोग जो कहते हैं हम ब्रह्मवादी हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, आंख नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, काना है, लूड़ा है, लंगड़ा है, तो भगवान कहता है ये तो नीचे दुनिया में जाने चाहिए, ये मेरे पास आने के अधिकार कहां से हो गए? ये देवता कहते हैं, ये श्लोक देवताओं की स्तुति का है। और फिर देवता कहते हैं मां यशोदा वसुदेव अब आपको भय करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके हृदय में विराजमान है इस वक्त। और फिर भगवान को प्रणाम करके निकलने के लिए तैयारी की, देवताओं को बोला चलो, देवता हटे नहीं पीछे, देवता पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों? जहां कहीं भी भगवान जिस साधु के हृदय में प्रकट होता है ना, आप उसके पास जाओगे वहां से आपके उठने का मन नहीं करेगा। ये साधु की पहचान है। साधु की पहली पहचान यह है कि जिसके हृदय में भगवान बसता है ना, उसके पास आप जाओगे तो आपके जाने की इच्छा नहीं होगी, टाइम बीत जाएगा पता नहीं लगेगा। और दूसरा उसका परिणाम क्या है, जब वहां से आप लौट के आओगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन व्हेन यू मीट साधु, यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन वो कंप्लीटली। ये दोनों काम नहीं होते हैं तो इसका मतलब देयर इज नो पोटेंसी। ब्रह्मा और शंकर बाहर निकले, देवता रवाने हो गए, और पीछे क्या होता है वहां, एकदम वसुदेव ने देखा, अरे चमत्कार क्या हो गया, अद्भुत बालकम चतुर्भुजम, चार हाथों का एक अद्भुत बालक सामने खड़ा है, शंख चक्र गदा हाथ में लिया हुआ है, कुंडल कुरीट पहने हुआ है। वसुदेव तो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा, चतुर्श्लोकी भागवत वाली प्रार्थना करने लगा। और तब देवकी ने भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हुए देवकी कहती है सारा ब्रह्मांड आपके पेट में है, ये प्रलय के समय सब ब्रह्मांड आपके पेट में चला जाता है, आप मेरे पेट में आ गए हैं, ये तो हंसी की बात है। हाउ इज इट पॉसिबल, दुनिया जिसके पेट में वो मेरे पेट में आ गया, और फिर आपके ये चार हाथ वाला और मेरे उधर से उत्पन्न हुआ, ये तो हंसी की बात है, आप छोटे बच्चे बन जाओ, प्लीज बिकम ए स्मॉल चाइल्ड। और भगवान ने उस वक्त बोलना शुरू किया, माता जी लोग बच्चे आपने भी देखे होते हैं पैदा हुए नर्सिंग होम में, बोलते हैं क्या? हाँ, माता पिता से बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। और ये बच्चा कह रहा है सुनो वसुदेव सुनो देवकी, तुम पहले प्रश्नी थे, सतरूपा थे, प्रश्नी थे, और तब मैं प्रश्नी गर्भा होके आया, तुमने बड़ी तपस्या की थी, मेरे को बेटा करके माना, मैं तो तुम्हारे घर में प्रश्नी गर्भा होके आया, लेकिन मैं अपना वचन पाल नहीं सका, मेरे जैसा बेटा तो है नहीं, तो इसलिए मैं 3 बार उस वचन को पूरा करने का प्रयास किया। इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर प्रॉमिस डू इट 3 times, दोबारा तुम कश्यप और आदित्य बने, मैं तुम्हारे घर में वामन बन के आया था, आज वसुदेव और देवकी तुम सामने देखो ताकि तुम्हारे को भय न हो, मैं अपना वचन पूरा करके तेरे घर में पुत्र बन के आया। और फिर भगवान छोटा बालक बन गए और रोने लगे, देवकी बोलते रो मत रो मत, बोले हंसने लगे भगवान, अभी बोलती है कि तुम ऐसे खड़ा मत हो बालक बन जाओ, और बालक बनने के बाद बोलते रोना बंद करो, ये कैसे होगा। और तब वसुदेव को भगवान छोटे से अब बालक बन गए, वो कहते हैं ततस्य सोरेर परचोदयात, सोरसेन के बेटे वसुदेव को आज्ञा दी, परचोदयात प्रेरणा दी, मुझे यहां से उठाओ, तुमको भय लगता है कंस से, चलो मेरे को यहां से लेकर नंद गोकुल में यशोदा के पास छोड़ के आओ, और वहां एक लड़की हुई है उसको यहां लेकर आओ। अब यहां से वसुदेव ने ऐसे उठाया कृष्ण को, जैसे हृदय के पास कृष्ण को लाए, हाथ से हथकड़ी नीचे गिर गई, पांव से बेड़ी खुल गई, वहां लिखा है कृष्ण वाहक वसुदेव। कृष्ण वाहक का मतलब जो कृष्ण को गोद में उठा लेता है, दिल में धारण कर लेता है, उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जो जीवन को कृष्ण को जीवन में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव के हाथ पांव की बड़ियां खुल गई और दरवाजे ऐसे खुले जैसे सूर्य उगने के समय अंधेरा चला जाता है, कोई आवाज नहीं होता है, सूर्य उगता है अंधेरा जाता है, कोई आवाज होता है, नो साउंड, ऐसे दरवाजे खुले बगैर चींचा के, हालांकि बड़े लोहे के दरवाजे थे, ताले खोलने के समय बड़ा खड़ा खड़ा होता था, कुछ नहीं हुआ। और महामाया ने सारे मथुरा वासियों को सुला दिया। जैसे बाहर वसुदेव निकला, ऊपर से इंद्र भगवान ने देखा, देवता कहता अरे इसका तो स्नान भी नहीं कराया, बच्चे के स्नान कराने के बगैर स्नान के ले जा रहा है, ऊपर से बूंदाबारी शुरू कर दी, क्या अभिषेक तो इसका करना चाहिए। और बादल खुश होके बोला अरे हमारा नाम इसके नाम के ऊपर होगा घनश्याम, आज थोड़ा सा हमको बजना भी चाहिए। वो ऊपर से बादलों से गजगोड़ का आवाज आने लगा, थंडरिंग थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, मग्नोमी लिखा है, बहुत मुस्कुराने लगे बादल भी। और फिर बादलों ने एक जगह तो कह दिया कि हमने कई बार समुद्र को जाके कहा कि तुम्हारे अंदर सोया हुआ भगवान का दर्शन करा दो, हर बार समुद्र कहता है पहले भलाई का काम करो, मेरे खारे पानी को ले जाओ, ऊपर लाओ, मीठा करो, कब से हम कर रहे हैं नहीं दिखाया, लेकिन आज तो हमारा अपने आप चला आया है यहां देखने के लिए, तो ये मौका क्यों गंवाएंगे। बड़ा आनंद से बादल ऊपर गरजने लगे। तब इंद्र को विचार आया कहीं कोई देख न ले वसुदेव कृष्ण को ले जा रहा है, ऐसी मूसलाधार बारिश हो गई, एक बारिश ऐसे गिर रहे जैसे हाथी की सूंड जितनी बारिश, अब कोई आंखों के सामने की चीज दिखाई नहीं दे। वसुदेव फिर भी चला, लेकिन शेष ने बोला ये इंद्र को क्या हो गया, इतना छोटा बालक है इतनी बरसात। वसुदेव के पीछे से शेषनाग के आकर छाता धारण कर लिया, बोला आगे से क्यों नहीं आया, सांप आगे से आएगा तो डर लगेगा, पीछे से ठीक है पीछे से आना चाहिए ना। जमुना के किनारे वसुदेव पहुंचे और आज जमुना हिंद महासागर की तरह ऐसे उसके अंदर भवाटी चल रही है, जैसे व्हर्ल पूल की तरह चल रही है, आदमी को भय लगना चाहिए। आपने देखा है, एक फोटो देखा है आपने, टोकरी के अंदर ले जा रहा है कृष्ण को वसुदेव, तो माता जी लोग बच्चा जब पैदा होता है तो आप टोकरी में डाल के लाते हैं सर के ऊपर रख के, कोई माँ कोई बैंगन है भिंडी है आलू है गोभी है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं बच्चे को ऐसे उठाते हैं। जो भारत की माताएं हैं वो बच्चे का मुंह अपने करके तरफ और उठाती हैं, विदेशी माएं दुनिया की तरफ करके उठाती हैं देखा है उसको पकड़ के, इसका मतलब है तुम हमारी जान जल्दी छोड़ना है वो कहते नहीं हमारे दिल से तुम बेटा लगे रहो, उठाने का भी फर्क, और कुछ तो बंदरिया की तरह पीठ के ऊपर बांध के घूमती है ये बहुत बड़ा रहस्य। वैसे तो ऐसे वसुदेव ले जा रहा था, लेकिन जमुना में प्रवेश किया तो पानी बहुत ज्यादा था, पानी ऊपर आने लगा, तब वसुदेव ने निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को सर के ऊपर धारण किया होगा। इसलिए अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था, सबसे प्रेम आदमी ज्यादा किससे करता है? बीरबल ने कहा अपने आप से। बोला महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया में आदमी पत्नी से करता है, बेटे से करता है, देश से करता है। बोला सब बातें कहने की, अपने से ज्यादा करता है। बोला प्रूव इट। बीरबल एक बंदरिया लाया, एक उसका बच्चा पकड़ के लाया और अकबर के सामने खड्डा खोदा। खड्डे के अंदर इतना बड़ा, सर के ऊपर जितना बंदरिया, उसके अंदर बंदरिया और बच्चा दोनों डाला। फिर पानी लेके एक जग पानी डाला, पानी इतना आया बंदरिया ने बच्चे को उठा के गोद में ले लिया। एक और जग पानी डाला, पानी यहां आया कंधे के ऊपर, बंदरिया ने बच्चे को बिठाया। एक जग पानी आया, यहां तक पानी आया, सर के ऊपर बच्चे को बिठाया। अब थोड़ा पानी यहां गया, बंदरिया ने बच्चे को पकड़ के पांव के नीचे रखा और ऊपर खड़ी हो गई। महाराज सुना ये किससे आदमी प्रेम करता है संसार में? जब नाक के पास पानी आता है तो दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन वसुदेव वो है जिसके नाक के ऊपर पानी आया तब भी भगवान को सर के ऊपर धारण किया, इसलिए भगवान उनका बेटा बनाए। तभी भगवान वसुदेव के सर के ऊपर उस टोकरी में दिखाई देते। लेकिन जमुना ने कहा कि कल मुझे इसकी पटरानी बनना है, कृष्ण की कालिंदी है जमुना। आज जमुना ने कहा पहले मैं दिखाऊं तो सही कि मैं ऐसी कोई कमजोर नहीं हूं, मेरे में भी कुछ है। और फिर दिल खोल के जमुना ने दो हिस्सों में फट गई और भगवान को जाने का, भगवान के लिए उसके पिता को रास्ता दे दिया। कभी ऐसे भी कई शास्त्रों में मिलता है, भगवान ने अपना चरण निकाला और जमुना ने चरण का स्पर्श किया और जमुना नीचे बैठ गई और वसुदेव आराम से दूसरी तरफ चला गया। अब गर्ग संहिता और अन्य जगहों पे यह लिखा है कि नंद बीच का लड़का है परजन्य का, लेकिन भाइयों ने उसको अपना राजा बनाया है और नंद राजा है और सुमुखा गोप की बेटी सबको जश देने वाली यशोदा उनकी पत्नी है, लेकिन सब सुख है, सुविधा है, 900,000 गायें हैं, धन है, धान्य है, सब प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। बड़े यज्ञ तप किए, एक बार नंद को सोए हुए को एक नीला नीलमणि सुंदर सा बालक उसके हृदय में दिखाई दिया। यशोदा को उठाया, यशोदा मेरे को एक हृदय में बालक सोपन में दिख रहा है। यशोदा बोले लज्जा मुझे आ रही थी, मैंने बता नहीं, मेरे को भी वो बालक दिख रहा है। दूसरे दिन एक योगिनी आती है एक ब्राह्मण बच्चे को साथ लेकर, मधुमंगल को, उसका नाम पूर्णमासी है, और कहती है नंद यशोदा तुम्हारे घर में पुत्र होगा। अरे मां तू तो बड़ा अच्छा किया, योगिनी तुम्हारे वो घर बना देते, तुम यहां रह जाओ। आज यशोदा को भी, गर्भवती है यशोदा, नंद के गोकुल में आनंद है, अब यशोदा भी बच्चा देने का टाइम हो चुका है। उस वक्त नंद पांच नंदिन की भाइयों की कोई बहन भी है, उसको बुलाया गया है घर में। अब तैयारी यहां भी हो रही है बच्चे के आगमन की, लेकिन यहां योग माया ने सबको सुला दिया, मथुरा में महामाया ने और यहां योग माया ने। भगवान के भक्तों के ऊपर योग माया का असर होता है और संसार के ऊपर महामाया का असर होता है। आज वसुदेव जैसे आ रहा है, सब सोए हुए हैं गोकुलवासी भी, हालांकि सबको मालूम है कि डिलीवरी होने वाली है। पहले बाहर बैठे हुए थे लोग, चौपाल में बाहर बैठे थे प्रतीक्षा, स्त्रियां गा रही थी, लेकिन ऐसा माह कम किया, कोई ढोल के ऊपर गिड़ी हुई है, कहीं का सर इधर पड़ा है, सब देखा। वसुदेव सीधा चला गया और यशोदा के पास बच्चे को रख के और वहां से लड़की को बदला और लेके बाहर निकला। और निकलते हुए यमुना ने वैसे ही रास्ता दिया कि ये तो भगवान का पिता है, हमारा सुसर है, इसको रास्ता देना चाहिए। दरवाजे खुले हुए, जैसे ही योग माया को नीचे रखा वसुदेव ने, हथकड़ी अपने आप पड़ गई, दरवाजे बंद हो गए और बच्ची ने रोना शुरू किया और द्वारपाल जाग गए। और जागते ही द्वारपाल कंस को जाके सूचना दी और कंस जाग रहा था। क्या टाइम हुआ होगा? 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव ने उठाया, जमुना पार की, गोकुल गया, पैदल गया था, कार में नहीं गया था, फिर वहां से वापस आया तो 3:30-4 बजे होंगे। सारी रात उसको नींद नहीं आई थी कंस को, इसलिए कंस भगवान का बड़ा भक्त है कि रात सारी जाप कर रहा था, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण। अब यहां भागवत में एक बहुत सुंदर चीज लिखी हुई है कि वो टाइम कौन सा था, वैवस्वत मनवंतर था, 28वीं चतुर्युगी थी, कलयुग का प्रथम चरण था, अंतिम समय के पास, और उस दिन भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अंधेरी अंधेरी रातें थी, और अष्टमी की तिथि थी, बुध का वार था, हर्षण योग था, चंद्र के उदय का समय था, चंद्र पूरा उगा हुआ था आकाश के ऊपर अष्टमी का, रात को 12 बजे, हर्षण योग था, रोहिणी नक्षत्र था, और उस वक्त काल की शुद्धि हुई, दिशाओं में दिग्पाल जो है वो डर रहे थे कि कंस ने परेशान कर रखा है, आज हमारा मालिक आ रहा है, अब हम सुखी हो जाएंगे, और दिशाएं काल शुद्ध हो गया, गगन की शुद्धि हो गई, आकाश कैसा है, भाद्रपद के महीने में बादल होते हैं, आज बादल नहीं है, आज पहले पहले जैसे आकाश में तारे ऐसे चमक रहे जैसे हीरे मोती बिखरे हुए हैं, और आकाश के बाद पृथ्वी की शुद्धि हुई, आज पृथ्वी ने कहा मेरा पति आ रहा है, दुल्हन की तरह पृथ्वी सज धज के कृष्ण का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई, हर ऋतु के फूल है, फूल उत्पन्न हो गए, और जल की शुद्धि हो गई, नदियां सारी बहुत पवित्र हो गई, क्यों पवित्र हो गई बोला, कालिंदी के साथ इसका विवाह होगा ना, हम सब इसके साथ संबंधी हो जाएंगी, ऐसा भाग्य हमारा आज से हो गया, नदियां शुद्ध हो गई, वन दर्शन वन वनस्पति सारे, और वायु प्रसन्न हो गई, हवा मंद मंद ठंडी हवा बहने लगी, वायु ने कहा मेरे पुत्र ने राम की बहुत सेवा की थी हनुमान ने, आज स्वयं भगवान दोबारा आ रहे तो मैं भी अपनी सेवा पंखा हिला लेता हूं, और ब्राह्मणों की यज्ञ अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, जो कभी से नहीं जली थी आज जलने लग गई, देवताओं की दुमदुमियां अपने आप बजने लग गई, देवता उठे नहीं लेकिन घंटे अपने आप बज लगे कि भगवान आ गया है, और उस वक्त किन्नर और गंधर्व साथ गाने लगे, कभी साथ नहीं गाते, किन्नर बहुत काले हैं और गंधर्व बहुत सुंदर है, लेकिन आज वो अपना रंग भेदभाव भूल गए, दोनों साथ गा रहे हैं, और सिद्ध और चारण साथ में गा रहे हैं, सिद्ध गाते हैं भगवान के गीत और चारण गाते हैं राजा महाराज वो तो चाटुकारी वाले, लेकिन आज दोनों साथ गा रहे, देवता और मुनि उनके मन प्रसन्न हो गए, और उसके बाद आधी रात के समय भगवान का यहां प्रकट्य होता है, ये वातावरण बताया गया है, और यहां कंस तो पहले से जाग रहा था, कंस वहां से ऐसे भागा, और भागा तो लिखा है कंस के बाल बिखर गए, इसका मतलब इतना उसको तेजी से भागा कि जो भी पगड़ी बगड़ी थी वो भी गिर गई, अब भागते हुए सीधा अंदर आया, और अंदर आते ही देवकी के हाथों से ऐसे लड़की को छीना, आज तक 6 बच्चे देवकी ने दिए थे मौन रहकर, बोली नहीं थी, आज लड़की को जब लिया तब कहती है भैया ये लड़का नहीं है, ये कन्या है, इसको तुम मत मारो, ये तुम्हारा क्या करेगी, क्यों ऐसे आज देवकी बोल रही है, देवकी इसलिए बोल रही है कि मेरे बच्चों की तो मैंने कुर्बानी दे दी, लेकिन मैं जानती हूं कि ये बच्ची यशोदा की है, मेरी नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं इसकी सुरक्षा नहीं करूंगी तो संसार कहेगा कि पराई बच्ची को बलिदान में चढ़ा दिया, आज रोती हुई यशोदा कहती है देवकी कि ये बड़ी हो जाएगी बेटा, मैं तेरे लड़के से इसका विवाह कर दूंगी, ये तेरी बहू हो जाएगी, तू इसको मार मत, लेकिन ओ बहुत कंस इतना आवेश में था, लड़की को उठाया और जहां टांगों से पकड़ के घुमाया और उसी पत्थर को मारने का प्रयास किया जिसके ऊपर 6 निशान पहले पड़े थे, कंस के हाथों से निकल के 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए ऊपर से कहने लगी दुर्गा मूर्ख कंस तेरे को मारने वाला पैदा हो गया, कंस तो आश्चर्य हुए अरे अरे ये क्या हो गया, ये कौन है, और ये देव ये जो असुर लोग होते हैं ना देवी के बड़े भक्त होते हैं, मन बदल गया एक दिन में कंस का, 1 मिनट में मन बदल गया, देवी को तो प्रणाम किया लेकिन देवकी के पांव में पड़ गया, बहन मैंने तुमसे बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने तुम्हारे बेटे मारे इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ये देवता झूठ बोलते हैं, गलत आकाशवाणी कर दी थी ना, दैत कभी अपने ऊपर नहीं बोलता है मैंने किया, किसी और के ऊपर उंगली उठाई, बोलता है मैं कभी मारने वाला हूं, ये तो देवताओं ने मेरे को धोखा दिया, गलत नहीं बोला होता मैं तेरे भाई बेटे थोड़ी मारता, वासुदेव अभी मेरे को माफ करना, आप दोनों आजाद हो अपने घर जाओ, आप अपने घर जाओ, कंस ने रिपेंटेंस किया, अब 6 बज गए, 5:30, कंस तो थका हुआ था, आके सो गया, घंटा दो सोया हुआ सभा में। दूसरे दिन जैसे गया, चारुण आया, मुष्टिक आया, बकासुर आया, अघासुर आया, इसके सारे साथी आके बैठे। भोजराज, भोजराज ने कहा सुनिए, रात वो जो लड़की का जन्म हुआ, लड़का नहीं जन्म हुआ, देवकी का, और लड़की देवी के रूप में ऊपर खड़ी होकर मुझे कहने लगी कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया। सब बोलते हैं महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी देवता आपसे डर के कांपते हैं, आप डर मत करो। अब गलत संग से कंस का मन बदल गया। थोड़ा अच्छा संग मिलता है तो आदमी सुधर जाता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कथा में आते हैं तो हमारा मन कहता है भगवान का नाम ले, वापस सुबह ऑफिस जाते हैं तो भगवान याद ही नहीं आता। क्यों? ऐसी अच्छा संग मिलता है तो मन करता है, और फिर दूसरे संग में जाते तो जो कुछ पहले किया था उसके ऊपर पानी फिर जाता है। ये दुनिया का काम ऐसा है। अब तो वो कहते हैं महाराज डरो मत, डरो मत, हम है ना। विष्णु कहां रहता है? ब्राह्मण, गाय, यज्ञ, वेद पाठ वहीं रहता है ना, ये सब खत्म कर देते हैं, रहेगा ही नहीं। और बच्चे बोल रहे जन्म ले लिया, 10-20 दिन में जो भी बच्चे जहां मिले उन सबको हम मार देंगे। अब तो कंस ने कहा ठीक है ये काम शुरू कर दो। यहां ये काम शुरू हो गया, और वहां गोकुल में नंद बाबा के घर में कृष्ण के जन्म का उत्सव मनना शुरू हो गया। वो जो मां सेवा कर रही थी, यशोदा उठी सुबह, उठी क्या मतलब, ये तो 12 बजे उसी वक्त में ही। यशोदा तो एक तो पीड़ा होती नहीं है भगवान के प्रकटे के समय, लेकिन योग माया ने ऐसा वातावरण बना लिया रखा था कि यशोदा उठ के देखती, अरे क्या बच्चा था कि बच्ची थी ये भी पता नहीं। और जो 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 नर्स थी उसने भागते हुए कहा बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया बाहर, तो भाई आनंद हो गया, नंद के आनंद भयो, हे नंद के घर में आनंद हो गया, नंद के घर में बेटा हो गया। ये तो रात को बड़ा उधर खुशी का वातावरण हो गया। हुआ क्या था? यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। अनुजा का क्या अर्थ है? छोटी बहन, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना। और दूसरा लिखा है कि नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया, उसका अर्थ यह है कि मां के साथ जुड़ा हुआ जो नाला हो, जो जो कनेक्शन होता है उसको काटा। तो क्या वसुदेव वहां से बच्चा कनेक्शन के साथ लाया होगा क्या? तो उसका कनेक्शन वहां कटा होगा या दूसरा कनेक्शन कटा? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है वसुदेव और देवकी ने वसुदेव कृष्ण को जन्म दिया, जो 4 हाथ वाला है, चतुर्भुज रूप में। नंद और यशोदा नंद नंदन कृष्ण को जन्म दिया, जो गोलोक विहारी द्विभुज श्याम सुंदर है, और उसके साथ योग माया को जन्म दिया। तो यशोदा को 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, और वसुदेव ने जैसे बच्चे को रखा, ये वसुदेव कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण के अंदर प्रवेश किया और 1 बज गया, बन गया। 11 साल तक दोनों साथ रहे। जिस दिन अक्रूर लेने के लिए आया नंद गांव से मथुरा में धनुष यज्ञ में कंस के पास, उस दिन अक्रूर घाट के ऊपर जमुना के किनारे अक्रूर ने देखा कि मेरे साथ 4 हाथ वाला वसुदेव कृष्ण चल रहा है। इसलिए ब्रज की मान्यता है कि नंदनंदन कृष्ण ब्रज से बाहर कभी एक कदम भी नहीं जाता है, नेवर गोज, इट टेक्स स्टेप आउट ऑफ वृंदावन। सो नंदनंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण जो है वो यशोदा नंदन कृष्ण केवल ब्रज में रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो यहां दूसरे दिन तो बड़ा उत्सव हो गया नंद के घर में। अब तो कई दिनों से बूढ़े गोपू ने नए कपड़े नहीं पहले निकले पहने थे, वो पेटियों के अंदर से रेशमी पगड़ियां कपड़े और काजल आंखों में बड़ा बड़ा डाला, और मूछों के ऊपर तेल वेल भी लगाया, और उठ के तैयार, और गोपियां सारी तैयार होके सर के ऊपर आभूषण लेके और देने के लिए नंद बाबा के घर चलो, बधाई देने नंद बाबा के घर चलो, और दूध मक्खन एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, यहां तो खाने को नहीं मिलता है। और कीचड़ हो गई, कुछ बूढ़े लोग, कुछ मेरे जैसे मोटे लोग उसके ऊपर गिरने लगे, लोग तालियां बजाने लगे, ऐसे लिखा है। और फिर नंद बाबा को पकड़ के पूर्णमासी आदि कहते तुम बैठो यहां, तुम्हारे ऊपर रंग डालते हैं, ऊपर से रंग डालो, बोला अभी कब तक डालोगे, उठो बोलते हैं, नाच के दिखाओ फिर तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है। यहां बड़ा आनंद का हो रहा है। ब्रजवासी कहते हैं नंद उत्सव कैसा हुआ? नंद बाबा ने दिल खोल कर गायें दी सबके, सबको गाय धन हजारों के हिसाब से, गाय सोना चांदी दान दिया, इसलिए नंद का नाम है महामना। महामना का अर्थ है जितना धन है उससे ज्यादा देने की जो दिल रखता हो। ब्रजवासी ऐसे कहते हैं नंद उत्सव के लिए, क्या कहते हैं, एक आदमी चावल की बोरी उठा के जा रहा था नंद के घर से, सामने आया, क्या है चावल? अरे मूर्ख चावल क्यों लाए हो? उधर तो चांदी मिल रही है, चांदी, फेंक दिया चावल, गया उधर से चांदी उठा के आया, चांदी ले जा, दूसरा आया, क्या है चांदी? मूर्ख सोना पड़ा है, कहां चांदी उठा के जा रहा है? वो चांदी उधर फेंक दी, वो सोना लेके जा रहा है, और सोने वाले क्या सोना, अरे हीरे मोती है, सोना उठाते, वो वहां सोना फेंक दिया। अब चारों ओर ब्रज में जहां देखो जहां सोना चांदी हीरे मोती बिखरे हुए, बोला क्यों? बोला लक्ष्मी ने कहा है जहां मेरा पति आया चारों ओर लक्ष्मी ने अपना प्रदर्शन कर दिया कि ब्रज कितनी सुंदर हो गई है। ये नंद बाबा का नंद उत्सव हुआ यहां, और नंद छठा दिन अभी होने वाला है कृष्ण के जन्म को। नंद बाबा के मन में विचार आया, मैंने सुना है बच्चों को मारने के लिए कंस ने चारों ओर आदमी भेजे हैं, मेरे को कंस को टैक्स देने जाना चाहिए, कम से कम मुंह भर देंगे उसका तो, कम इधर तो नहीं आएगा। तो छकड़ों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर दूध दही लादा और न गोपों को उठाया और नंद बाबा चला गया मथुरा, टैक्स दिया, बगीचे में रुके थे, वसुदेव नंद से मिलने आया बस बगीचे में। और नंद और वसुदेव जो मिले हैं ये भी मिलना बहुत सुंदर है। नंद वसुदेव के दुख की चर्चा करते कि आपने बहुत संकट मेरे भाई सहाय, भगवान ने कैसे भी कृपा की कि अब आप बाहर हो। और वसुदेव अपने दुख की बात न कर, नंद बाबा इस उम्र में आपको बेटा हुआ है, आप बड़े भाग्यशाली हो। दो मित्र एक दूसरे से कैसे हित की बात करते हैं, ये दोनों बात करते हुए वसुदेव की दृष्टि कहां है? गोकुल के ऊपर है। क्यों? उसके दोनों बेटे वहां है, बलराम और कृष्ण। आज वसुदेव कहता है जल्दी वापस लौट जाओ गोकुल, गोकुल में उत्पाद होने वाले हैं। क्यों ऐसे क्यों कह दिया? वो तो पॉलिटिशियन है, वसुदेव क्षत्रिय, उसको मालूम है कंस ने चारों ओर मारने के लिए भेजा है। लेकिन नंद बाबा बहुत सरल आदमी है, वापस लौट रहा है नंद। नंद को आने दीजिए, उसकी बैलगाड़ी आस्ते आस्ते आती है, हम वापस चलते हैं गोकुल में। हरे कृष्ण। कंस ने देखा कि जो मुझे मोर मारने के लिए आएगा वो तो बहुत पवित्र होगा, तब मुझे मार सकता है ना। पवित्र को बोलते हैं पूत, पूत मतलब पवित्र, पूता मदभावम आगता, पवित्र होके मेरे पास आते। तो पूत को लाने के लिए पूतना को भेजना चाहिए, जो पूत को भी खींच के लाए तो उससे ज्यादा बलवान होनी चाहिए ना। ये क्या है? ये खेचरी है। खेचरी का मतलब क्या है? आसमान में उड़ सकती है, अपना वेश बदल सकती है। आज इसको हम कभी कभी बोलते हैं पहली अटैक, कंस ने गोकुल के ऊपर एयर अटैक की, आसमान से भेजा पूतना को, इसको एयर अटैक बोलते हैं। पूतना खेतरी उसका नाम है। जब ये कहा सुखदेव गोस्वामी ने बालक हाथ नहीं, पूतना जा रही है गोकुल, तो सुखदेव महाराज का ये शब्द सुन के परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए, दुख का चेहरे के ऊपर दुख देखा परीक्षित के। और सुखदेव ने कहा जहां भगवान का नाम कीर्तन होता है वहां भी कोई असुर कुछ नहीं करता है, यहां तो साक्षात भगवान आया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये श्लोक बहुत सुंदर सिद्धांत का है कि जहां हरि कीर्तन हरि कथा होती है वहां कोई असुर नहीं आ सकता है, यहां तो साक्षात भगवान आया है। और खेतरी आकाश से उतरी, सुंदर नारी का वेश धारण कर लिया। कैसी नारी हुई? मानो लक्ष्मी हो। और जा रही है तो ब्रजवासी उसको देख के कह रहे अरे नंद के घर में आज लक्ष्मी आ रही है, पता नहीं सरस्वती है, कौन है, चलो चलो नंद का घर कहां है, चलो मैं दिखाता हूं, चलो मैं दिखाता हूं। सारे उसको ले जा रहे हैं और प्रवेश किया नंद भवन में। अब तो यशोदा देख के कहती है, रोहिणी कहती है अरे हमारा भाग्य, देखो तो कौन है, इंद्राणी है, सरस्वती है, नहीं लक्ष्मी है, उसके हाथ में फूल तो नहीं है, लक्ष्मी तो नहीं लगती है, कमल का फूल नहीं है, कौन है? तब तक यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण के ऊपर से दृष्टि हटाई और इस सुंदर को देखने लगे। भगवान ने कहा मेरी मां मुझे नहीं देख रही है, इसके ऊपर दृष्टि डाल रही है, तो कोई बात नहीं, जिसके ऊपर भक्त दृष्टि डाले उसका उद्धार करना चाहिए। और क्या कहती है पूतना, कब से पड़ा है बच्चा, तुम उसको दूध नहीं पिला सकती, लो इधर। और दोनों मां ने बच्चे को उठाया, पूतना ने मना नहीं किया, पूतना उसको दूध पिलाने के लिए स्तन के पास ले गई, भगवान ने आंखें बंद कर दी। इस कृष्ण के आंखें बंद करने के ऊपर हरिसूरी और वल्लभ आचार्य के शिष्य बने, उन्होंने बहुत बड़ी कविता लिखी है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। जीवा गोस्वामी ने 7 कारण लिखे हैं भगवान ने आंखें बंद क्यों की, और उन आंखें बंद करने में एक कारण ये लिखा है कि आइए दूध पिलाने और सज धज के स्त्री के रूप में आइए, जैसे पत्नी हो ऐसे का मुंह देखना अच्छा नहीं है। और भगवान इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि मैं इसको देख लूंगा तो ये अपने स्वरूप में आ जाएगी और इस असुर को देखे मेरी मां डर जाएगी, तो इसको यहां रहने दो। और भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली, भगवान ने तो मान नहीं कि ये एक आंख सूर्य है और एक भगवान की आंख चंद्रमा है, दोनों ने कहा ये है असुर, ये आई है भगवान को विष देने। भगवान तो स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे, लेकिन इनके लिए न देव मार्ग से और न पितृ मार्ग से हम नहीं जानेंगे, सूर्य मार्ग से नहीं जानेंगे, चंद्र मार्ग से हम इसको नहीं उधार करेंगे। दोनों आंखें बंद हो गई अपने आप। और फिर ऐसे भी मानना है कि भगवान ने कहा मुझे, मैं तो आया हूं ब्रज में मक्खन खाने के लिए, दूध पीने के लिए, ये विष पिलाने आई है, विष पीना मेरा काम नहीं है। शंकर भगवान को बुलाया कि विष भी पियो, इसको मारो भी, ये मेरा काम नहीं है, तुम आके कर लो। तो भगवान का ध्यान कर रहे थे शंकर। तो ऐसे बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं इसको बोलती है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। जैसे स्तनपान करा, ये कौन थी पूतना मालूम है? कौन थी पूतना? बलि महाराज के घर में जब बांधा था बलि महाराज को वरुण के पास से गरुड़ ने, उससे पहले बलि की बेटी थी, उसका नाम था, अभी मेरे को अभी अब जबान के ऊपर था, अभी चला गया। हाँ क्या? रत्नावली, रत्नावली दिखा था, छोटा सा बाणमान बालक, बोला ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं भाग्यशाली थी। मन में पहले बेटे का भाव आया और जब बलि को बांधा तो बोला इसको तो विष देना चाहिए। भगवान बोला तेरी दोनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा। वो आज पूतना बन के आई है, विष लगा के आई है, लेकिन स्तनपान जो करा दिया भगवान ने, दूध क्या पिया, विष उसका प्राण खींच लिया। और इतना छोटा सा बच्चा 6 दिन का, ऐसा स्तन को पकड़ के रखा और पीड़ा होने लगी, बोला छोड़ो मुच्छ, छोड़ो छोड़ो। भगवान मुस्कुराते, बोला एक बार पकड़ने के बाद छोड़ने वाला नहीं, एक बार पकड़ लिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब तो पूतना घर से भागी, और ये भगवान की इच्छा थी कि यहां गिरेगी तो नंद का महल तोड़ देगी, यहां से भागना चाहिए। आगे पूतना भागी, पूतना आगे जा रही है और इस स्थान पे आई जहां कंस का बहुत सुंदर बगीचा 12 मील का था, 12 किलोमीटर का। पूतना गिरी, कंस के सारे बगीचे के पेड़ गिरे और ऊपर स्थन के ऊपर स्थन उसका पूतना का, उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा पहाड़ हो उसके ऊपर छोटा सा गोपाल बैठा हुआ था। और वहां से नंद बाबा की बैलगाड़ी अभी आके उसी वगे खड़ी हो गई, बोला सुबह हम गए थे रास्ता साफ था, ये पहाड़ बीच में कहां से आ गया? सुबह हम गए शाम को पहाड़ गिरा हुआ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? देखने लगी क्या है, तब तो गोपियां पीछे दौड़ती दौड़ती आ रही थी, यशोदा तो मूर्छित हो गई। गोपियां आ गई, गोपियां ने ऊपर कृष्ण को देखा, हिम्मत नहीं हुई गोपों को चढ़ने की पूतना के सर के ऊपर। गोपियां एकदम पूतना के सर के ऊपर चढ़ गई, कृष्ण को ऊपर से नीचे उतार के आई। उतार के आते ही गाय की पूछ लेके कृष्ण को झाड़ने लगी, गाय की पूछ से गोपाल तेरी रक्षा करे, गोविंद तेरी रक्षा करे, गोविंद को गोविंद रक्षा कर रहा है। कहते हैं पहले भगवान ने गाय से अपनी रक्षा की, फिर भगवान ने गाय की रक्षा की। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाऊं, गाय ने मेरी रक्षा की तो मैं गाय की रक्षा करूंगा ना। आज गोपियों ने उठा के गोबर का तिलक लगाया और भगवान के यहां, तुम्हारी गोविंद यहां रक्षा करेगा, माधव यहां रक्षा करेगा, बाजू की छाती की रक्षा, हृदय की ऋषिकेश करेगा। ये अभी भी माताएं अपने बालकों के लिए गाती हैं, ये जाके ढूंढ लेना वहां गोपियों ने जो बहुत सुंदर भगवान के नामों के द्वारा अपने बच्चे की सुरक्षा का कवच पहनाया है। और इसी के ऊपर उसी भावार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं केशवाय नमः, तो ये भी शरीर के रक्षा का कवच है, इसको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। बाहर लगाने में कोई कारण नहीं लगाने के, तो कम से कम पानी से सुबह बोल दिया करो हाथ से, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नहीं लगा कर जाए तो ये जरूर करना, ये अपनी सुरक्षा का कवच है। आदमी युद्ध भूमि में जाता है तो कवच पहन के जाएगा ना। हम माया से लड़ने रोज बाहर जाते हैं और कवच नहीं पहने जाएंगे तो मूर्ख माने जाएंगे और मारे जाएंगे। यहां यशोदा के हाथ में वापस कृष्ण छोटा बालक दिया गया, यशोदा ने स्तन पान किया, कृष्ण ने दूध पिया, यशोदा ने समझा मेरा बेटा ठीक है, मेरा ठीक बेटा ठीक है, मेरे बेटे की भगवान नारायण ने रक्षा की। ये पहली लीला संपन्न हुई, 6 दिन का अभी भगवान है, भगवान 3 महीने का मुश्किल से हुआ है, दूध पिला रही है माँ यशोदा। एकदम कृष्ण भारी होने लगा, नीचे रखा तृणावत, ऐसे विंड की तरह आया, कृष्ण को ऊपर उठाया, आकाश में ले गया, कृष्ण ने गले से पकड़ा। अब कृष्ण भारी होने लगे, उड़ नहीं पाया, ये कहां से पत्थर मेरे गले में किसने बांध दिया है। कृष्ण छोड़ने वाला यहां भी नहीं था, तृणावर्त धड़ाम से नीचे गिरा और तृणावर्त के गिरते ही फिर कृष्ण का यहां से सुरक्षा हो गई। अब कृष्ण 6-7 महीने का, 1 साल के करीब है, करवट बदल लेता है अपने आप। करवट बदलती तो बड़ा उत्सव हो गया। उत्सव क्या हो गया, सब स्त्रियों को बुलाओ, मेरा बेटा अपने आप करवट बदल रहा है। अब करवट बदलना शुरू हो गई, स्त्रियां आ रही है, सबका स्वागत कर रही है यशोदा रानी। और कृष्ण को कहां से लाया, बाहर एक छकड़ा बहुत बड़ा, बैलगाड़ी थी लंबी चौड़ी, उसके ऊपर दूध दही रखा हुआ, उसके नीचे कृष्ण को छाया में सुलाया। बच्चों को बोला तुम देखना, रोए तो बुलाना। कृष्ण ने बोला उत्सव मेरा, बुलाया सबको मेरे लिए, खिलाए इसको रहे, मेरे को घर से बाहर सुला दिया। भगवान ने कहा ये कौन सा रहे, ये कौन सी रीति। भगवान ने कहा अच्छा एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है मैं हूं रसराज, मेरे ऊपर और रस रख दिया है, ये गाय का रस मेरे ऊपर रखा, ये मुझसे बड़ा थोड़ी है, गिराओ इसको। दे मारा पांव थोड़ा सा कैक्सल को, धड़ाम से छकड़ा गिरा, सारा बर्तन नीचे गिरा, बहुत बड़ा आवाज हुआ, भागती भागती सारी स्त्रियां आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसने गिराया किसने गिराया। वो छोटे से बच्चे खड़े थे ना, किसने गिराया बेटा, इसने पांव से मारा, इसने पांव मारा है। ए, बच्चे झूठ बोलते, ये कैसे पांव मारेगा, बच्चे सच बोल रहे थे लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, बच्चे बिल्कुल सच बोल रहे थे किसी ने बात नहीं मानी। वो सट्टासुर उसके अंदर प्रवेश करके चला गया था। टाइम आज का हो रहा है, कथाएं तो कल यहां से आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे। अब मिट्टी खाने की लीला आएगी, और फिर आएगी बहुत सुंदर लीला कल, दामोदर लीला, और दामोदर लीला के बाद एक लीला होगी, और तब 3 साल और 4 महीने का गोपाल हो जाएगा, गोकुल छोड़ के वृंदावन में आ जाएंगे, फिर वृंदावन की लीला, और फिर नंदगांव चले जाएंगे। तो हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद।